हम जावत से निकलकर नंदालय की तरफ जा रहे हैं। नंदालय जावत की नैरित दिशा में है। राय को साथ लेकर हम जाबरपुर के दक्षिण की तरफ जो द्वार है वहाँ से बाहर निकल चुकी हैं। देखिए रास्ता कितना सुंदर है, रत्नों से जड़ा हुआ है, दोनों तरफ बकुल के वृक्ष हैं, उनकी शाखा प्रशाखा एक दूसरे से मिलकर ढेर सारे फूलों की लता से ढका हुआ है, इसीलिए रास्ते में बहुत सुंदर छाया है। फूलों के सौरभ से इस रास्ते में नया निखार आ गया है। कोयल और कितने ही पक्षी मधुर मधुर गीत गा रहे हैं। हमारी प्राण प्यारी राई हमारे साथ एक राजहंस की भांति जल्दी जल्दी चल रही है। उनके अंग कांति सोने जैसा उजला है, उनके अंग कांति से ही ये रास्ता उज्जवलित है, रास्ते में उजाला छा गया है। ईश्वरी सोच रही है कि कब हम श्याम सुंदर का दर्शन करेंगे और इसी आनंद से उनका सुंदर अंग पुलकित हो गया है। अब तो श्याम सुंदर की याद की वजह से थोड़ा धीरे चलने लगी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है राधा, हमारे महाजन कवि गा रहे हैं। कोरी बोरो राजहंस जिनी गामिनी चलो लिहो शंकित गेहा अमूल तोड़ित दंड हेम मंजुरी जिनी अति सुंदर देहा। कड़ी वर अर्थात एक गजेंद्र या तो राजहंस जैसे चल रही है ईश्वरी, और एक बहुत ही निष्पाप सुनिर्मल बिजली के खंभे की तरफ लग रही है। उनका पूरा अंग सोने जैसा है, बहुत ही सुंदर है, और उनका केश कैसा जलधर तिमिरो चामोर जिनी कुंतलो औलो का भृंगो सोई बाली भूह मदन धनु भ्रमर भुजंगिनी जिनी आध विधु बर भारी। उनके केश काले घने घटाओं जैसे हैं, या तो घोर अंधेरा जैसा है, और चवर की तरह वो गिर रहे हैं उनके ललाट पर, जैसे कि भौरे कमल फूल के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, उस तरह कुछ छोटे छोटे जुल्फे उनके सोने जैसे मुखरे पे गिर रहा है। उनकी भौं मदद देव की धनुष जैसे है, या तो किसी सांपनी जैसी है जो जादू कर सकती है, और उनका ललाट बिल्कुल अर्धचंद्र अर्थात अष्टमी के चांद जैसा दिख रहा है। नोलिनी चकोर शफुरी बड़ो मधु करो मृग खन जन जिनी आखी नाशा तेल फूल गोरूर चंचु जिनी गिदिनी शोभन विशेखी। उनकी आंखें कैसी हैं? या तो आप उनको कमल फूल के कली मानिए, या तो चकोर मानिए, या तो जो छोटी छोटी कुछ ब्राइट मछलियां हैं जिन्हें कहते हैं शफरी, वो मछलियां यहाँ वहाँ चौंक कर जाती रहती हैं। राधा रानी की आंखें ऐसी हैं, या तो आप उनकी जो आंखों की मणि है उन्हें भौरा मानिए, जो श्री कृष्ण कमल का शहद पीने के लिए उत्सुक है, या तो उनकी आंखें मृग नयनी है, या तो उनकी आंखें खंजन जैसी हैं। उनकी नाक तिल फूल जैसी खूबसूरत या तो गरुड़ के चोंच जैसा और उनका मुखमंडल कैसा है कौनों को मुकुर शशि कोमल जिनी मुखो जिनी बिंब अधर कुआरे दर्शन मुकुता जिनी कुंद कड़क बिजो जिनी कुंभ कंठ अकारे उनका चेहरा एक सोने का आईना जैसा है या तो कमल जैसा है और उनके होंठ बिंब फल को भी मात दे दे उनके दांत मोतियों जैसे या तो कुंद फूल को भी हरा दे और उनका कंठ देश शंख जैसा है बेल ताल जुगो हेम कलश गिरी कटोरी जिनी और कुछ साजा बाहु मृणाल पाश बल्लोरी जिनी डमरु सिंह जिनी माजा उनकी बक्ष या तो बेल के फल जैसा है या तो ताल फल जैसा है या तो सोने के कलश जैसा है या तो सोने के पर्वत जैसे है और उनकी बाहें कमल फूल की डंडी अर्थात मृणाल जैसे है लता जैसे है और उनके हिप्स उनकी कमर वो शेर के कमर जैसा है या तो डमरू के जो मझला पोषण होता है बीच का पोषण होता है स्लिम वैसा है लोमो लता बोली शोई बोलो कज्जल त्रिबोली तड़ंगी निरंगा नाभि सरो बरो सरो रूह दल जिनी नितंब जिनी गजकुम और उनकी नाभि के नीचे की तरफ एक रोम का एक लाइन आता है एक हेयर लाइन आता है बहुत ही पतला सा उनके जो पेट का हिस्सा है वहाँ त्रिबोली अर्थात तीन लाइन वहाँ गिरते हैं तरंग जैसे हैं और उनका नाभि सरोवर में जैसे एक कमल खिला हुआ है वैसा है उनका नितंब देश गज कुंभ यानी हाथी के सर पर दो कलश जैसे जो दिखते हैं उस तरह का है उरुजुग कदली कोड़ी बड़ो करो जिनी थल पंकज जिनी पद पानी नख दारिम बीज इंदु रतन जिनी पिकु जिनी अमिया बानी उनकी जांघें वो केले का जो स्टेम होता है उस तरह के हैं या तो किसी बहुत ही बड़े हाथी के सून जैसे हैं और उनके चरण स्थल कमल एक फूल है वो कमल जैसा होता है लेकिन वो बड़े बड़े पेड़ों पे खिलता है तो वो स्थल कमल जैसे उनके चरण हैं उनके नख चरण के जो नख हैं वो अनार के बीज जैसे पिंक पिंक दिखते हैं या तो वो किसी रूबी स्टोन को भी मात दे दे उनके वचन बिल्कुल अमृत है कोयल जैसा है भनई विद्यापति अपरूप मूर्ति राधा रूप अपारा राजा शिव सिंह रूप नारायण एकादश अवतार कवि विद्यापति कह रहे हैं कि राधा रानी का जो मूर्त है वो अपरूप है अतुलनीय है राधा रानी का रूप तो अपार है उनका वर्णन हम कैसे करें अब देखिए कुंडलता कह रही है हे राधे तुम्हारा पति अभिमन्यु तो तीन चार दिन प्रवास भी गया था वो तो कल ही सांझ को लौट आया है और वो गौशाला में ही सो गया था लेकिन फिर भी तुम्हारे अंगों पे मैं नख का निशान देख रही हूँ तुम्हारे होठों पे کسی کے دانت کا نشان دیکھ رہی ہوں تو لگ رہا ہے کہ تم سچ میں بہت ہی بڑی ستی ہو۔ کندلتا کی باتیں سن کر شریمتی اندر سے تو اتفلت ہے لیکن باہر اپنے نینوں کو کنچت کر کے وہ دیکھتی ہے تو للیتا کندلتا سے کہنے لگی، کندلتا کل ون میں سخی کے ستنوں کو ایک شک پکشی نے سوچا کہ انار کا پھل ہے اور اسی لیے اس پہ نخ کے نشان کر دیے، اور سخی کے ادھروں کو سوچ لیا کہ یہ تو بمب کا پھل ہے اسی لیے اس کے ادھروں کو بھی کاٹ لیا۔ وہ شک پکشی بڑا ہی ڈھیٹ ہے، تم کچھ اور شنکا کیوں کر رہی ہو؟ کندلتا اور للیتا کی باتیں سن کر شریمتی کے اندر میں پلک جاگ جاتا ہے، ان کے انگ پر آنند چھا جاتا ہے۔ اسی طرح کی ہاس پریہاس کرتے ہوئے آپ سب لوگ نندالے کی طرف جا رہے ہو۔ شریمتی شری کرشن درشن کے آنند میں وبھور ہے اور کنہیا کی مدھر مدھر یادیں ان کے دل میں چھائی ہوئی ہیں، اس لیے وہ اور زور سے چل ہی نہیں پا رہی تھی۔ شریمتی ایک دن کا واقعہ ورنن کرنے لگی۔ آج کو شایونی نونتی نشانی شوتی آچن شوئی جے چھلو مولومی بودھور بھورومی مولوم تمہار کوئی۔ جانتی ہو سکھیا کیا ہوا کل رات کو؟ میں تو اپنی نندنی کٹیلا کے ساتھ سو رہی تھی اور اچانک سوتے ہوئے نیند میں مجھے لگا کہ میں سخا بدوا کے ساتھ سوئی ہوئی ہوں۔ تمہیں میں اصلی بات بتاتی ہوں کیا ہوا؟ اوہ پوچھو مت، میں نے نیند کے آلس میں کیا کر دیا؟ نیدیر آلوشے بودھوا دھادوشی تاہارے کوری نو کوری نونودی اتیا روشیا بولی جی بودھوا پالنی کاری۔ ارے میں نے نیند کے حال میں نے سوچا کہ وہ کٹیلا ہی میری بدھوا ہے اور میں نے اسے جور سے جپٹ لیا۔ اب نندی اٹھ کر غصے میں ہو گئی اور کہنے لگی، ارے تو یہ کسی بدھوا بدھوا کہہ رہی ہے؟ اے تو ڈھیر کو نہ جانی کون جو نہ بوجھی نہ تو ہر ریتی کلوپتی ہوئی یا پوروپتی لوئیا ایموتی کورو ہو ریتی۔ ہاں ہاں میں سمجھ گئی، تو بڑی ڈھیر ہے، تو ہر روز کیا کرتی ہے میں سب جان گئی۔ کل استری ہو کر تو خود کے پتی کو چھوڑ کر تو کسی دوسرے کے پتی کو لے کر ایسے ہر روز بلاس کرتی ہوگی۔ جیشو نے شروبونی پورے رو بودونی نویا نے لکھنو تائی دادا گھرے ایلی کوری بوگو چڑی کھانے کو بیراج رائی رائی تو ذرا کہہ جا، آج تک تو میں سن رہی تھی دوسروں کے منہ سے کہ تو ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے، آج تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تو کسی اور کا سنگ کرتی ہے۔ کہہ جا آج تجھے مزا چکھاتی ہوں، بھیا کو گھر لوٹنے دے، انہیں میں ضرور شکایت کروں گی۔ نٹھور بوچوں نے کافی چھ پوڑا نے موریا روئی نو لاجی پھرائی آنکھیں گورو پہ تھا کی سوکھنے ہمارے جوجی۔ نندی کے نشٹھور وچن کو سن کر میں تو کانپنے لگی، ہائے اب میں کیا کروں؟ اگر میں کچھ کہتی ہوں اس کے وپریت تو وہ کہے گی بہانے بنا رہی ہے، اور میں اس کی باتوں کو سویکار بھی تو نہیں کر سکتی، اسی لیے میں بس یوں ہی ہمت دھر کے سیدھی بیٹھ گئی اور ایک دم گمبھیر بنا لیا اپنے چہرے کو۔ میں نے سوابھیمانی کی طرح اپنی گردن بھی اونچی کر لی، پھر ہاتھی شو کی کوچا لیا آنکھیں نویا نے دیکھی کہ آر چونڈی داش کو باکولو بھائی کانور پیری تھی جا، اور پھر سکی اچانک نندی نے مجھے پیچھے سے جور سے جپٹ لیا، میں تو چونک گئی۔ کیا دیکھتی ہوں؟ हाय, मेरी आंखों को तो विश्वास नहीं बच रहा था। मैंने आंखों को खूब रगड़कर देखा, ये ननदी कहाँ, ये तो वही है जो अब तक ननदी बनके मुझे छल रहा था। कवि चंडीदास कह रहे हैं, राधे कुल का भय क्यों करती हो जब तुम्हें कानू से प्रेम है, तो फिर वही तुम्हारी की रक्षा करेंगे। श्रीमती सखियों के निकट अपना भाव गुप्त रखना चाहती है। वो कह रही है, सखी मैं और जोर से चल नहीं सकती, रास्ते में बड़े कंकड़ हैं। तो कुंदलता हंसकर कह रही है, कंकड़ तुम्हारे पैर में चुभ रहे हैं या तुम्हारे दिल में? आप भी हंसकर बोलती हैं, काला कंकड़ तो उनके दिल में लगा हुआ है। अचानक ईश्वरी की आंखें कहीं दूर जाकर टिक जाती हैं। अब सब उनकी आंखों को फॉलो करते हुए वही दृश्य देखने लगते हैं। और क्या देख रहे हैं कि नंद भवन के द्वार पर सुंदर सलोनी श्याम सुंदर खड़े हैं। उनका एक हाथ सुबल सखा के कंधे पर है और दूसरे हाथ में वो एक सुंदर कमल पकड़े हुए हैं और इस कमल को ऐसे घुमा रहे हैं जैसे कि कमल नहीं गोपियों का दिल निचोड़ रहे। कैसे दिख रही है श्याम सुंदर? राधा रानी अपने ही श्रीमुख से वर्णना कर रही है, सखी अंजन गंजन जग जन रंजन जल दुपुंज जिन बरुना तरुणारुण थल कमल दलारुण मंजिर रंजित चरणा। सखी उनकी आंखें इतनी काली काली हैं कि काजल को भी शर्म आ जाए और इनकी काली काली आंखों से ये पूरे जगत को रंग देते हैं। और उनका वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, जैसे कि नया मेघ आसमान में छाया हुआ है। उनके चरण देखो ना, एकदम स्थल कमल, जो कमल स्थल पर खिलता है, बड़े पेड़ पर खिलता है, वैसे स्थल कमल जैसा पिंक है। तरुण है मेरे महबूब और उनके चरणों में मंजीर शोभा पा रही है, अर्थात नुपुर की शोभा देखने लायक है। नुपुर रंगा रहे हैं उनके उन रंगे हुए चरणों को। देखो सखी नागर राज विराज, देखो सखी नागर के राजा यहाँ पर विराजमान है। नागर अर्थात आशिक, श्याम सुंदर तो आशिकों का राजा है। क्यों शुद्धोई शुधार और हाश विकोषित चांद मुलिन भल लाजे इंद्र बर बरण गर्भ विमोचन लोचन मन मथ फादे। देखो उनकी जो मुस्कुराहट है ना, उसमें से शहद टपकता रहता है, इतना शहद टपकता है कि चांद भी लजा जाए। और उनका उनकी जो आंखें हैं वो नील कमल का घमंड चूर चूर कर दे। उनकी आंखें तो कुछ नहीं, बस मनमथ यानी कामदेव का रचाया हुआ एक फंदा है। भाव भुजग पाशे बाधुल कुलवती कुल देवती मोन कांदे। उनकी भू कैसा है, उनकी भौंहें कैसी हैं, वो तो बिल्कुल सांप जैसा है। कोई नाग है जिसके जरिए वे कुलवती स्त्रियों को बांध लेते हैं और कुलवती स्त्रियां उनका दिल रोना शुरू करते हैं, रोने लगते हैं। ভ্রম করম্বিত জান বিলম্বিত কেলি কদম্ব কো মান গোবিন্দ দাস ছিতে নীতি নীতি বিহরই ঐশন মূরতি রসাল। উনকে কর কমল কেসে হ্যাঁ ও ইতনে সুন্দর হ্যাঁ আর উনকে ভুজায়ে বিলকুল উনকে নীল অর্থাৎ জানু তক আ যাতে হ্যাঁ আর উনকি যো মালা হ্যাঁ ও কদম্ব ফুলো কি মালা যো পহনে হুয়ে হ্যাঁ ও ভি কেলি কদম্ব হ্যাঁ অর্থাৎ ও কদম্ব ফুল কি মালা ভি প্রেম রস মে ডুবা হুয়া হ্যাঁ। মহাজন কবি গোবিন্দ দাস কে রহে হ্যাঁ কি উনকে চিত মে তো ইহি মূর্তি ইহি রূপময় সূরত রোজ রোজ উনকে দিল মে বিহার করতে রহতে হ্যাঁ। এ সখি এসা রূপ হ্যাঁ কি মুঝে তো শক হো রহা হ্যাঁ ইয়ে হ্যাঁ কৌন কি ওই মেরা মহবুব মেরা প্রেমী শ্যাম সুন্দর হি হ্যাঁ না কি কই কাম দেবতা হ্যাঁ কই রস কা দেব হ্যাঁ ইয়ে কৌন হ্যাঁ আর কনিয়া কে রূপ অমৃত কো আপনি নয়ন সে পান কর রহি হ্যাঁ শ্রীমতি ও আহিস্তা আহিস্তা মোহ দশা মে যা রহি হ্যাঁ আর তভি উনকি নাসা মে শ্যাম সুন্দর কা অপূর্ব অঙ্গ কা খুশবু প্রবেশ করতা হ্যাঁ শ্রীমতি কো জেসে হি শ্যাম সুন্দর কা অঙ্গ গন্ধ মিলতা হ্যাঁ তো ও তুরন্ত বাহরি হোশ মে আ জাতি হ্যাঁ ঈশ্বরী কে দিল মে উছল রহা হ্যাঁ বহুত হি গাঢ়া শ্রী কৃষ্ণ অনুরাগ কি তরঙ্গ কি মালা নে শ্রী কৃষ্ণ প্রেম কি লহরে উঠ রহি হ্যাঁ উছল রহি হ্যাঁ উনকে অঙ্গ পর পুলক অশ্রু কম্প জসি সাত্বিক বিকার খেল রহে হ্যাঁ ও কে রহি হ্যাঁ আপসে সখি ইয়ে নন্দ ভবন মে প্রবেশ করনে কে লিয়ে কে অর কোই দূসরা রাস্তা নেই মে নেই যা সকতি তো ইয়ে শুনকর ললিতা সখি বোল পড়তি হ্যাঁ মেরি প্রিয় সখি ইস লম্পট কে সামনে সে জানা হোগা ইসকে ডর সে তুমারে অঙ্গ মে কাঁটে উভর আয়ে হ্যাঁ আর তুমারে কমল জেসি আঁখো মে আঁসু নিকল রহে হ্যাঁ কেউ সখি ডর কিস বাত কা জব তুমারে গুরুজন নে তুমে আজ্ঞা দিয়া হ্যাঁ কি তুম ইস রাস্তে সে যা সকতি হো তো জরুর তুম যা পাওগে চলো সখি হাম তো ইসি রাস্তে সে নন্দালয় মে প্রবেশ করেঙ্গে। ঈশ্বরী মন হি মন খুশ হোতি হ্যাঁ আর ধীরে ধীরে উস রাস্তে মে আগে জানে লগতি হ্যাঁ এক বার দেখিয়ে তো ঈশ্বরী ক্যা কর রহি হ্যাঁ ও আপনে ঘুমটে কো ওড়নে কে বহানে থোড়া আর খোল দেতি হ্যাঁ ঘুমটে কো আর আপনা সুন্দর সা কমল সা চেহারা দিখা দেতি হ্যাঁ শ্যাম সুন্দর থোড়া সা আপনে অঙ্গ ভি স্ট্রেচ কর লেতি হ্যাঁ তো উনকো উনকে শ্রী অঙ্গ কা ঝলক ভি মিল জাতা হ্যাঁ আর শ্যাম সুন্দর কো ভি থোড়া আচ্ছে সে দেখ লেতি হ্যাঁ আপনে মেহবুব কি রূপ মাধুরী থোড়া জ্যাদা আস্বাদন কর লেতি হ্যাঁ কনিয়া জি ভি অপলক দৃষ্টি সে শ্রীমতী কি অতুলনীয় রূপ মাধুরী দেখ রহি হ্যাঁ শ্রীমতী ভি বিভোর হ্যাঁ আপনে প্রাণ বল্লভ কা ভুবন মোহন রূপ মাধুরী কা দর্শন করকে দোনো দেখিয়ে যুগল সরকার এক দোনো কা দর্শন কেসে আনন্দ কে সাথ কর রহে হ্যাঁ দোনো কে সুন্দর অঙ্গ সে মহা মাধুরী ঝলক ঝলক কর গির রহা হ্যাঁ আর আপকে নয়ন ভি উস মাধুরী অমৃত কি নদী মে মহা সুখ কে সাথ আপ ভি সন্তরণ কর রহে হ্যাঁ স্বিমিং কর রহি হ্যাঁ কনিয়া জি কে দর্শন কে আনন্দ সে আর অনুরাগ কে প্রবল অনুরাগ কে বজহ সে শ্রীমতী কে অঙ্গ পর স্তম্ভ জরিমা এসে সাত্বিক ভাব আ গয়ে হ্যাঁ ও তো অভি চল হি নহি পা রহি হ্যাঁ ক্যা করে অভি কেসে লেকর জায়ে উনে নন্দালয় মে আপ কি সখি তুঙ্গ বিদ্যা वो चालक है, चतुरा है। वो तुरंत सोचती है अब तो प्रिया जी में कुछ भाव बदलना पड़ेगा, इसीलिए वो तुरंत कहने लगती है, सखी राधे वो देखो देखो कितना अच्छा है ना ये नंदेश्वर। ओहो ये पता है तुम्हें कि ये 16 कोस ऊंचा है, 8 कोस दीर्घ है और 2 कोस तक तो इसका विपुल है, आयतन है। पता है सखी इसमें कैसे कैसे पेड़ हैं? अंदर चलोगी तो तुम्हें रसालेदार फनस, अर्जुन, बुवाक, नारियल इतने सुंदर सुंदर पेड़ दिखेंगे। और पता है सखियाँ यहाँ कौन कौन सी लताएं हैं? माधवी, मालती, नवमल्लिका, ऐसे पूरे फूलों से भरे पूरे लता और वृक्ष हैं। 6 ऋतुएं एक साथ यहाँ विराजमान होती हैं। कोयल और बाकी पंछियों की कलक पूजन से इतना सुमधुर आवाज उठता है यहाँ पर, और भौरों का झंकार तो क्या कहने, ऐसे म्यूजिकली भौरे गाते हैं कि तुम्हारा दिल भर जाएगा। और सखियाँ ये जो नंदीश्वर पर्वत है ना, यहाँ पर 4 तरह के रॉक पत्थर आपको मिलेंगे, सफेद, पिंक, नीला और येलो, अटक पीला। और यहाँ से 4 तरह के झरने भी निकलते हैं, क्योंकि 4 तरह के रॉक्स है ना, इसीलिए 4 रंगों के झरने निकलते हैं। यहाँ से सफेद रंग की सरस्वती, गुलाबी रंग की अलकनंदा, नील रंग की जमुना और पीले रंग की गंगा जैसी नदियाँ निकलती हैं यहाँ पर। और पावन सरोवर, यशोदा कुंड, ऐसे असंख्य सुंदर सुंदर सरोवर यहाँ पर हैं। वो नदियाँ जाकर ऐसे सुंदर सरोवर में फिर मिल जाते हैं। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं कि क्या बताएं। इन सरोवरों में सफेद रंग के कमल, नील रंग, गोल्डन कलर और लाल रंग के कमल, कल्हार अर्थात लिली बहुत सुंदर लगती हैं। और इन फूलों की वजह से यहाँ चक्रवा, सारस जैसे पक्षी भी कितने सुंदर सुंदर गीत गाते हैं। देखो देखो नंदीश्वर कितना प्यारा लग रहा है। राधा रानी अब भाव उनका बदल जाता है, वो पहाड़ी की शोभा दर्शन करने लगती है। और इस तरह से आप सब नंद भवन में प्रवेश करती हैं। सच नंद भवन कितना सुंदर है, चारों तरफ मणियों से जड़ित सोने का दीवार है, चारों तरफ 4 द्वार हैं, द्वारों पर सुंदर सुंदर तोरण, मालाएं, मोतियों की मालाएं भी लटक रही हैं, ऊपर ध्वजा फहरा रहा है, कितने ही कलर की ध्वजाएं हैं और वे पवन में झूल रहे हैं, डोल रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कि वो पथिकों को अर्थात ट्रैवलर्स को बुला रहे हैं कि आओ आओ हमारे यहाँ आनंद में तुम भी विभोर हो जाओ, आओ ना हमारा मेहमान बनो ना। पूरब की ओर हीरे का मणि है और ये हीरे का मणि से भरा हुआ एक सोने का कबाट है अर्थात की डोर्स है, यही है वो विशाल मेन गेट सिंह द्वार। इस मेन गेट के दोनों तरफ व्हाइट मार्बल का दो विशाल सिंह है, इनके सफेद सफेद जटाएं हैं और पिंक कलर और ब्लू कलर के मणि से बने हुए नयन हैं। इनके नयनों के बाहर का हिस्सा ब्लू है और अंदर रूबी स्टोन से इसका नयन का जो तारा है वो बना हुआ है। ये जो सिंह द्वार है اسی میں پانچ فلورز موجود ہیں. پہلے جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں تو گنی جن بیٹھتے ہیں اور وہاں بھی کنہیا کے گردان گاتے رہتے ہیں. اس کے سیکنڈ فلور پہ نرتکیاں ناچتی ہیں. تھرڈ فلور پہ نہبت بجتا ہے ارتھات لائٹ آرکیسٹرا. فورتھ فلور پہ کنہیا جی کے لیلا کے انوسار سونے کا ایک گھڑی ہے, اس کا الارم بجتا رہتا ہے کہ شام سندر اٹھو ابھی بھور ہو گیا, شام سندر ابھی بریک فاسٹ کے لیے چلو ابھی بریک فاسٹ کا سمے ہے, شام سندر ابھی گوٹھنے جا رہا ہے. تو اس طرح کا اناؤنسمنٹ ہوتا رہتا ہے وہاں سے. اور ففتھ فلور پہ سونے کے کلش شوبھے پہ ہے, وہاں ایک بہت ہی بڑا پٹاخا ارتھات فلیگ ہے, دھجا ہے, وہ اڑتا رہتا ہے. تو شری نند کا بھون بہت ہی اونچا ہے, بہت پیارا ہے. اور یہاں جو محل ہے اس کے سیون فلورز ہیں. اس کی جو نارتھ ونگ ہے وہاں اجنیا راجا کا جو ونگ ہے پور ہے وہ وہاں رہتے ہیں. دکشن کے ونگ میں پرجنیا راجا اور پورب میں راجنیا راجا. تو یہ تینوں بھائی ہیں ارجنیا پرجنیا اور راجنیا. ان میں جو پرجنیا راجا ہے ان کے پانچ بیٹے ہیں. پانچ بیٹے کون کون ہیں؟ اور نند مہاراج اور ان کے باقی بھائی ہیں. وہاں جو سنندا اور نندن کے آلے بھی ہیں, وہاں اپانند ابھینندن کے رومس ہیں, اور نند مہاراج کا بھی اپنا ایک ونگ ہے. وہاں پر راج سبھا بھی ہوتا ہے. اتر کے دوار سے دکشن کے دوار تک ایک بہت چوڑا رستہ ہے. پورب کی دشا میں اور پشچم کی دشا میں دونوں ملا کر اس میں 42 چوک ہیں, اور بیچ میں بھی 7 چوک اور ہیں, تو ٹوٹل 49 چوک ہیں. بیچ میں شری نارائن کا مندر دکھ رہا ہے نا آپ کو, دیکھیے کتنا وچتر اور کانتی مائے ہے, بڑا اجول ہے. مندر کے پورب کی دشا میں نند مہاراج کا بیٹھک ہے, وہاں ان کے جو بندھو باندھو ہیں ان کے لیے الگ ڈرائنگ روم ہے. یہاں پر ایک چندرشالا بھی ہے, اور اس کی پورب کی دشا میں ایک اور سنہ دوار ہے. نارائن مندر کے پشچم میں کنہیا جی کا ڈائننگ روم ہے, اور وہاں نزدیک ہی ان کا کانچی بھنڈار ہے. کانچی بھنڈار ارتھات جہاں پہ کچی چیزیں بنتی ہیں, چاول بھی یہاں پہ بنتا ہے اور باقی کچی چیزیں بنتی ہیں. اس کے پاس ہی کچن ہے جہاں سکھیاں رسوئی کرتی ہیں, اور اس کچن کے پشچم کی طرف ایک چھوٹا سا دوار ہے, اسے کہتے ہیں کھڑکی دوار. اب ایک کونے میں 12 چوک ہے, وہ بھی وائٹ کلر ماربل سے بنا ہوا ہے. یہاں پر روہینی ماتا کا بیڈ روم ہے, اور وہ دیکھیے وہ بیڈ روم کیرتیدا ماتا کا ہے. اس کے ایک طرف بشوانو بابا کا بھی بیڈ روم ہے, اور شیدام کا بیڈ روم الگ, داسیوں کے بیڈ رومس الگ ہیں, کندلتا کا ایک بیڈ روم ہے, دھنشٹھا کا بیڈ روم, شبھے شندے بھرنی تیوری یہ سب بھائی مائیں ہیں نا, ان کا بھی الگ الگ بیڈ رومس ہیں. پھر رنکن ٹنکن ان کے بھی الگ الگ بیڈ رومس ہیں. پھر بھدرا چندراولی ان کے بھی بیڈ رومس ہیں, کیونکہ یہ لوگ کبھی آتے ہیں نا نند بابا جشودا میاں سے ملنے یا اتسووں میں, تو نندے بابا اور جشودا میاں ان کے ٹھہرنے کے لیے الگ الگ کمرے پہلے سے بنا کر رکھے ہیں. یہ جب وہاں آتے ہیں تو یہ اپنا اپنا بیڈ روم سے یوز کرتے ہیں. یہاں کنہیا جی کا اپنا ڈرائنگ روم ہے. اس ڈرائنگ روم کے پورب کی طرف جو رومس آپ کو دکھ رہے ہیں نا, یہ رکت پترک جیسے سیوکوں کا کمرہ ہے. یہاں پہ داسیوں کے بھی کمرے ہیں, اور پورب کی دشا میں مدھوبتی کا اپنا بیڈ روم ہے, پالی کا روم ہے, وملا سکھی کا روم ہے, اور شری نرسنگھ دیو کا مندر بھی آپ کو دکھ رہا ہے. امبا کلمبا جیسے جو دائی مائی ہیں ان کے بھی رومس ہیں. پور کے اتر کی دشا میں جشودا میا کا بیڈ روم ہے. وہ تو بالکل گولڈن کلر کے مڑیوں سے جڑا ہوا ہے. پاس ہی نند بابا کا بیڈ روم ہے, وہ بھی بہت سارے مڑیوں سے جڑا ہوا ہے, وہ یلو کلر کا ہے. پھر شاملا جیسے سوہت سکھی, منگلا سکھی, ان کے بھی کمرے ہیں الگ الگ. بہت بڑا ایک رستہ ہے, وہ اتر سے دکشن تک جاتا ہے. اور کنہیا جی کا بیڈ روم ہے, پھر یلو اور ایمرلڈ سے جڑا ہوا منیوں کا بنا ہوا ہے. چلتے ہیں کنہیا جی کے بیڈ روم میں, بڑا مزہ آئے گا, دیکھتے ہیں وہ کیسا ہے. کنہیا جی کا بیڈ روم جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ وہ یلو اور ایمرلڈ کی منیوں سے وہ بنا ہوا ہے. اور پتا ہے کنہیا جی کا بیڈ روم, وہ دیکھیے تین فلورز ہیں اس میں اور 12 دوار ہیں, اور یہ دوار پہ بھی کتنے سارے منی جڑے ہوئے ہیں. اس میں تورن لگے ہوئے ہیں, سونے کے کلش چڑھائے ہوئے ہیں, اس میں چکر دھوجا پتاکا سب دوار پہ لہرا رہے ہیں. ہاں, نیچے سے اوپر تک ہیرے منی موتیاں سب لگی ہوئی ہیں. ونڈوز کو دیکھتے ہیں, ارے دیکھیے کھڑکیوں کا تو جو کباٹ ہے نا, یعنی کہ جو اس کے ڈورز ہیں کھڑکیوں کے, تو وہ بھی اندر نیل منی سے جڑے ہوئے ہیں. کمرے کے اندر تو کتنے ہی رتنوں کا جھولر جھول رہا ہے. ایک سندر چندرا تپ بھی ہے, ارتھات کی ایک بڑا سا امبریلا, اور اس میں بھی موتیوں کے جھالر ہیں, منی مکتا سب لگایا ہوا ہے. منیوں سے بنے ہوئے کتنے ہی دیے ہیں, اور یہ بالکل چمپک کی کلی جیسے یہ دیے لگ رہے ہیں. شبھ ساڑی بھی یہاں پہ رہتے ہیں, تو کتنا پیارا ہے نہیں کنہیا جی کا بیڈ روم. اچھا جی, چلیے اب تھوڑا ان کے سکھاؤں کے بھی رومس دیکھ لیتے ہیں. وہ لوگ بھی جب آتے ہیں ان سے ملنے, کبھی رات کو ٹھہر جاتے ہیں, تو ان کے لیے بھی تو الگ کمرے چاہیے نا. وہ دیکھیے پورب کی دشا میں مدھو منگل کا کمرہ ہے, اور یہ جے وجے کا, وہاں منجری اور داسیوں کا رومس ہے, وہ بھی ہیرے منی موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں. سکھیوں کے کئی کمرے ہیں, رتنوں کا بھنڈار تو ایک الگ ہے. اور ہاں, یہ جو ایک کمرہ ہے, یہاں پہ شری کرشنا سنان کرتے ہیں, اس کے بازو میں ہی وہ ان کا ٹوتھ برش کرنے کے لیے ایک الگ کمرہ ہے. اور یہ جو کمرہ ہے یہاں پہ وہ شنگار کرتے ہیں. رادھا رانی کا بیڈ روم وہ الگ ہے. رادھا رانی کچھ اسپیشل بنانا چاہے تو ان کے لیے الگ سا کچن بھی ہے, اور رادھا رانی کا ڈائننگ روم بھی الگ ہے. اور کون یعنی رادھا رانی جب وہاں پہ ٹھہریں گی تو وہ اپنے سکھیوں کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتی ہے, تو اس لیے ان کے لیے ایک الگ ڈرائنگ روم ہے جہاں پہ وہ سکھیوں سے مل سکتی ہیں, آرام سے بیٹھ کر باتیں کر سکتی ہیں. اور اس طرف دیکھیے وہ ہے بلداؤ جی کے چوک, وہ پورا یلو اور ایمرلڈ گرین کلر کا ایمرلڈ سے بنا ہوا ہے. یہاں پہ دودھ کا ایک بھنڈار ہے, ارتھات ایک کمرہ ایسا ہے جہاں صرف دودھ ہی دودھ رکھا جاتا ہے. اور اس کے ہی نزدیک میں ایک اور کمرہ ہے جہاں صرف طرح طرح کے آچار رکھے جاتے ہیں. اور نزدیک ہی داؤ جی کا شین کش ہے, ارتھات بیڈ روم ہے. اور پھر ان کا الگ ٹوتھ برش کرنے کا روم ہے, स्नान और श्रृंगार करने के भी अलग अलग रूम्स हैं। एक तो पूरे रत्नों का कमरा है जहाँ सब रत्ना ज्वेलरी ये सब कुछ रखा जाता है। उसी के पश्चिम की तरफ एक ऐसा कमरा है जहाँ सिर्फ दही स्टोर किया जाता है और एक हॉल है जहाँ घी स्टोर किया जाता है। उसके पास और एक हॉल है जहाँ सिर्फ चावल और अनाज रखे जाते हैं। इसी के पूरब की दिशा में वो चावल स्टोरेज हाँ स्टोर रूम की पूरब की दिशा में दाऊ जी का ड्राइंग रूम है। तो इस तरह से वहाँ एक रूम से दूसरे रूम तक जाने के लिए छोटे छोटे रास्ते हैं, वो भी एकदम झलमल झलमल करता है, इतना ब्राइट है। राधा रानी सखियों के साथ इस ब्रजराज भवन का निरुपम सौंदर्य दर्शन करती हुई प्रवेश कर रही है। आप भी देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं इस सौंदर्य का। ईश्वरी के पीछे पीछे आप जा रहे हैं। धनिष्ठा को देखिए ना, वो कैसे एक बार अंदर एक बार बाहर, क्योंकि वो सोच रही है कि प्रिया जी को इतना देर क्यों हो रहा है, देर क्यों हो रहा है। और जैसे वो आप लोगों को देखती है वो भाग कर आती है और एकदम प्यार से ईश्वरी को चपट लेती है और कहती है इतनी देर क्यों की, तुम्हें ना देखूं तो मुझे कितना कष्ट होता है। तुम नहीं जानती क्या, ईश्वरी कोमल स्वर में कहती है, मैं तो पराधीना हूँ सखी। धनिष्ठा बड़े प्यार से श्रीमती के हाथ पकड़ लेती है और यशोदा मैया के पास ले चलती। देखिए तो ब्रजराज पूर अर्थात नंद भवन पहले से ही इतना ब्रिलियंट है और अब श्रीमती की अंग शोभा से और भी ज्यादा निखार आ जाता है राजभवन। उनकी वो ज्योति दर्शन करके यशोमती मैया अंदर से उछल पड़ती है। उनके दिल में एक अपूर्व आनंद की लहरी बह जाती है। मैया राधा रानी आएगी आएगी, इसी इंतजार में तो वो देख रही थी, रास्ते ताक रही थी। और राधा रानी की आलोक जैसी रूप माधुरी का दर्शन करके मैया को तो ऐसा लगा जैसे कि त्रिभुवन की सभी शोभा संपद की अधिष्ठात्री देवी आज आ गई है उनके घर में। ईश्वरी में देखिए कितने दयनीय है। ईश्वरी छुपकर ब्रजेश्वरी मैया के चरणों में प्रणाम कर रही है। मैया प्यार से उन्हें वक्ष से लगा लेती है, बार बार चूम लेती है, उनके माथे पर चूमती है, गाल पर चूमती है और स्नेह अश्रु से उनका अभिषेक कर रही है। माँ श्रीमती को आशीर्वाद करती हुई कह रही है, ओ चंद्रमुखी तुम शतायु बनो, 100 साल जियो और हर रोज यहाँ पर आकर मेरे नैन और दिल को आनंदित करो। ईश्वरी भी प्रेम भरे गदगद स्वर में कह रही, मैया मैं तो तुम्हारी ही हूँ। और जैसे ही ईश्वरी मैया के चरण में प्रणाम करती है, आप सभी झुक जाती हो ब्रजेश्वरी के चरणों में। ब्रजेश्वरी आप सबको एक एक करके आशीर्वाद करती है, हर एक को आलिंगन करती है। यही है वात्सल्य की मूरत। वो किसी भी एक भी सखिया मंजरिया किसी को नेग्लेक्ट नहीं करती, आप में से हर किसी को समान रूप से प्यार करती है। ऐसे ही वात्सल्य की फूलों से शोभिता है मैया और आप लोग इतनी खुश हो जाती हैं मैया से मिलकर। ब्रज धाम ही ऐसा है जहाँ प्रेम के सिवा और कुछ नहीं है। वहाँ के लोगों को इन मणि मुक्ता सोना हीरा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस एक दूसरे से प्रेम जताने में लगे हुए होते हैं। मेहनती है
सरल है और प्रेमी है। इस मधुर प्रेम का, निष्कलंक प्रेम का, निर्दोष प्रेम का एक सागर है ब्रजधाम।